अध्याय सातवां। इस्तांबुल से निकलने को आतुर हमने एक नाव से बोसोपोरस जलमार्ग पार करने का निर्णय किया। हालांकि हम थक कर चूर हो चुके थे, खचाखच भरे नौका में बैठकर हमने राहत की सांस ली। बादलों से ढके धुंधले आकाश में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था और पक्षी उड़ान भर रहे थे। मैंने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। जब नाव सागर के भीतर प्रवेश करने लगी, मैंने मुड़कर उस विशाल नगर को देखा जो धीरे धीरे क्षितिज के समाता जा रहा था। पिछली रात मुझे लगा था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमने संघर्ष किया और बचने के लिए एक अकल्पनीय खतरा मोल लिया। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने आशा नहीं छोड़ी थी। दैवी शक्ति में विश्वास मानव को विकट से विकट बाधाओं को भी पार करने की शक्ति प्रदान करता है। एक विषम परिस्थिति में जब हमारे हृदय ने आशा को अंगीकार किया, तो हमने अपने से परे एक ऐसी शक्ति को आकर्षित किया जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा शुद्धिकरण किया और अंततः हमें मुक्त कर दिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे और शरीर में जोश का संचार हो रहा था, किंतु मैंने उन हथियारों के दल को हृदय से धन्यवाद दिया क्योंकि वे मुझे एक महत्वपूर्ण सीख देने और आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के साधन बने थे। एक ओर जहां इस्तांबुल में हमारा भयावह स्वागत हुआ था, वही दूसरी ओर तुर्की के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए हम वहां के लोगों के सौहार्द भरे सत्कार से गदगद हो उठे। कुछ लोगों ने हमें अपने घरों और दुकानों पर उनके साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनका भोजन सादा था, अधिकतर पारंपरिक रोटी और चाय, लेकिन उनके आतिथ्य ने हमारे हृदय को छू लिया और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। मैं वहां की मस्जिदों के वास्तुशिल्प और कलात्मकता से बहुत आकर्षित हुआ और जब भी मौका मिला भगवान के इन सुंदर घरों में दर्शन के लिए गया। हमारे यातायात के साधन हमारे धन के अभाव को दर्शाते थे। या तो हम हिचहाइक करते अथवा सामान एवं मवेशियों के साथ चलते स्थानीय लोगों से भरे ट्रकों में या पुरानी बसों में यात्रा करते। हमने मध्य तुर्की के रेतीले निर्जन पठारों को पार किया। बीच में कुछ समय के लिए हम अंकारा में रुके, जहां पशु विस्तृत फैले नंगे पहाड़ों पर चर रहे थे। सड़क पर लगभग दो सप्ताह की यात्रा के पश्चात हम पूर्वी क्षेत्र में जा पहुंचे, जहां जो पथरीला एवं पहाड़ियों से भरा था। यहां पर रातें ठंडी हो गई। हम इस्तांबुल से लगभग 800 मील आगे आए थे कि फिर से विपदा टूट पड़ी। मुझे भयंकर पेचिश हो गई। यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए हम अर्जेरियम नामक शहर में रुक गए और स्थानीय लोगों से ठहरने के लिए सबसे सस्ती जगह के विषय में पूछा। वे हमें शहर के बाहर एक चाय की दुकान पर ले गए और उस जर्जर भवन की चौथी मंजिल पर एक कमरा दिला दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय शौचालय था। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक खड़े जीने की 30 पथरीली सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। सीढ़ियों के बाईं ओर एक हॉल में जमीन पर एक छेद था, वो ही शौचालय था। मल वहीं जमा होता रहता और बाद में उसे फावड़े से उठाकर फेंक दिया जाता था। देखने से स्पष्ट था कि उसकी सफाई बहुत कम होती थी। पर्दे के नाम पर सड़ी लकड़ियों के तख्तों से बना एक दरवाज़ा था। हवा में फैली हुई एक असहनीय दुर्गंध ने मुझे चकरा दिया। अनेक दिनों तक मैं लगभग सारा दिन शौचालय में ही बैठा रहा। अपना काम करके शरीर को सीढ़ियों से खींचकर मैं जैसे तैसे ऊपर पहुंचता ही था कि फिर मुझे शौच के लिए नीचे आना पड़ता। घोर मिचलाहट, उल्टी और निरंतर दस्त के कारण मेरा शरीर खोखला हो गया था। इसी बीच मेरे दोस्त मेरे ठीक होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिदिन शहर की टोह लेने जाते। एक दिन मैं कमरे में अकेला था, अचानक एक अजनबी अंदर आया और जैफ के बैग को टटोलने लगा। मैं अचंभित होकर उसे देखने लगा। उसने बैग से जैफ का स्विस आर्मी चाकू बाहर निकाला और बोला, एक लीरा। फिर उसने मेज पर एक लीरा पटका और अपनी नई संपत्ति को ले तेजी से चलता बना। मैंने सोचा, लेकिन चाकू की कीमत उससे कहीं अधिक है। अपनी दुर्बल स्थिति की अपेक्षा भी मुझे लगा कि अपने मित्र की संपत्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए संघर्ष करता हुआ मैं पलंग से उठा और उस आदमी के पीछे पीछे नीचे की ओर भागा। मैंने उसका एक लीरा वापस किया और नम्रता से जोर देते हुए चाकू लौटाने के लिए कहा। उसने अनिच्छा से दे दिया। कृपया वापस आकर आप जैफ से बात कीजिएगा, मैंने लड़खड़ाती टांगों पर संभलते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे चला गया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक भीड़ सीढ़ियों पर धड़धड़ाती हुई ऊपर आई। बुखार और दस्त से कमज़ोर हुआ मैं मुश्किल से उठकर बैठ सकता था और उन लोगों का सामना करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं था। वे दरवाजे से अंदर आ धमके। भीड़ का मुखिया वही घुस पिठैया था, थोड़ी देर पहले चाकू चुराया था। मेरी ओर अंगुली कर वो चिल्लाने लगा, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी हैं। भीड़ भड़क उठी। चाकू और छड़ें लेकर उन्होंने मेरे पलंग को घेर लिया। गुस्से से वे टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाए, यू पाकिस्तानी डाई, यू डाई, यू पाकिस्तानी यू डाई, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। अकेला मैं बुरी तरह भ्रमित हो गया। भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता था। घबराहट में मैंने अपना अमरीकी पासपोर्ट उठाया और उन्हें दिखलाते हुए कहा, देखो देखो, मैं अमरीकी हूँ। भीड़ से एक अधेड़ व्यक्ति सामने आया। उसने मेरा पासपोर्ट हाथ में लिया और स्वघोषित अप्रवासी अधिकारी के समान उसका निरीक्षण किया। फिर सिर ऊपर उठाकर वो धीरे से बोला, तो तुम पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं, तुम अमेरिकी हो? हाँ, मैंने उत्तर दिया। वो मुस्कुराया और मुझसे हाथ मिलाने के लिए पलंग पर झुका। बहुत अच्छा, हमें अमेरिकी अच्छे लगते हैं। तुम तुर्की हो? तुर्की को हथियार देते हो? सभी ने अपना आदर व्यक्त किया और चले गए। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मुझे फिर से सीढ़ियों पर चढ़ती भीड़ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भगवान से रक्षा हेतु प्रार्थना की। फिर से भीड़ मेरे कमरे में आ धमकी और 10-15 लोगों ने मेरे पलंग को घेर लिया। लेकिन इस बार वे सब एक मित्र के रूप में आए थे, मेरे लिए चाय और रोटी लेकर। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, तुम अमरीकी हो? बहुत अच्छा, हमें क्षमा करना, इसे खा लो। जी मिचलाने के कारण मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, अपितु भोजन की गंध मात्रा से मुझे उपकाई आने लगती थी। मैं जानता था कि वो चाय और रोटी खाकर मुझे पूरा दिन रात उस सड़े शौचालय में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उनकी भेंट को अस्वीकार करना उनका अपमान होता। इस प्रकार के आदर सत्कार को मना करना बहुत कठिन था। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए पूरी प्लेट खा ली तथा और भी खाता रहा, जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो गए। शीघ्र ही मुझे उसका मूल्य चुकाना पड़ा। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक शाम धूल भरी सड़क पर घूमते हुए मैं लोगों की गरीबी देखकर विस्मित हो गया। टूटी फूटी झुग्गियों में पूरे परिवार के परिवार ठुसे हुए थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास गिनती की कुछ वस्तुएं और फटे पुराने कपड़े थे। भूखे और असंतुष्ट दिख रहे लोग उस सड़क के दोनों ओर झुक कर बैठे थे। यह ऐसी गरीबी थी जिसकी कल्पना करना भी पश्चिमवासियों के लिए केवल कठिन था। भले ही ये अक्टूबर का महीना था, रात की ठंडी हवाएं वहां आने वाले लंबे ठिठुराते सर्दी के मौसम के आगमन की सूचना दे रही थी। अपने कमरे तक वापस आने के लिए मुझे मकान के निचले तल पर बनी चाय की एक छोटी दुकान से होकर ऊपर आना पड़ता था। एक शाम चाय की दुकान में एक भीमकाय व्यक्ति ने मेरी बांह पकड़कर मुझे कुर्सी पर धकेल दिया। उसकी उम्र 30-35 वर्ष के आसपास रही होगी और उसके चमकते काले बाल और पतली मूछें थी। अन्य लोगों के हावभाव देखकर मैं समझ गया कि वे उसका बहुत आदर करते थे। उसने चाय का एक छोटा गिलास मेरी ओर बढ़ाया और अपनी जलती हुई काली आँखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। उसका शरीर और होंठ कांप रहे थे। मैं मूर्तिमान क्रोध के सामने बैठा था। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। अपनी सोने की अंगूठी पर अरबी में कुछ अक्षरों की ओर संकेत करते हुए वो एक क्रुद्ध सिंह के समान गरजा, अल्लाह। तब उसने अपनी एक अंगुली मेरे चेहरे के सामने उठाई और संकेत से मांग करने लगा कि मैं भगवान का नाम कहूँ। मैं उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था, मेरी आंखें मेज पर पड़े चाय के एक पारदर्शी गिलास को ही देख रही थी। उसमें कोई दूध या क्रीम नहीं थी, केवल चीनी का एक ढेला था जो पेंदी में धीरे धीरे पिघल रहा था। मेरी ठोड़ी को झटके से ऊपर उठाकर उसने मुझे अपनी धमकाती आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैं चीनी से भी अधिक तेजी से पिघल रहा था। उसने फिर से अपनी उंगली मेरे चेहरे पर उठाई और गरजा, अल्लाह! मेरे कल्याण के लिए यह अनिवार्य था कि मैं उसे संतुष्ट करूं, इसलिए मैं आदर के साथ धीरे से बोला, अल्लाह। उसने ऐसी आंखें भींची मानो वो मुझे जलाकर राख कर देना चाहता हो। वो गुस्से से तिलमिला उठा। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर दे मारी। नहीं, अल्लाह! कांच के गिलास जमीन पर गिरकर चूर हो गए और सभी लोगों ने हमें घेर लिया। अपनी आवाज को बढ़ाते हुए वो फिर से गरजाया, नहीं, अल्लाह! फिर से उसने अपनी अंगुली मेरे चेहरे पर गड़ा दी। इस बार मैंने भी जोर से चिल्ला कर कहा, अल्लाह! लेकिन ये उसकी अपेक्षानुसार ऊंचा नहीं था। वो क्रोध से आग बबूला हो उठा। मैं दहल गया। उसने फिर से अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी और चौथी बार अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाया, नहीं, अल्लाह! उस खचाखच भरी दुकान में सारी निगाहें मुझे ऐसे घूरने लगी मानो मैं उनके सबसे पवित्र स्थान को अपवित्र करते पकड़ा गया था। उसने अपनी शक्तिशाली अंगुली मेरी छाती पर मारते हुए मेरी कुर्सी को पीछे दीवार तक धकेल दिया और मांग करने लगा कि मैं भगवान का नाम उसी जोश से लूं जैसे वो ले रहा था। इस यात्रा में यह पहली बार नहीं था जब मैंने यमदूतों को अपने सिर पर मंडराते हुए पाया था। सर्वशक्तिमान अल्लाह से रक्षा की प्रार्थना करने के अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता था। मैं खड़ा हो गया, अपनी भुजाएं उठाई और अपनी पूरी जान लगाकर दिल से चिल्लाया, अल्लाह! वो बहुत देर तक मेरी आंखों में देखता रहा। दुकान में चुप्पी छा गई थी। फिर गंभीरता से अपने सिर को सहमति में हिलाकर वो चला गया। जब बाकी लोग अपनी अपनी मेजों पर वापस जा रहे थे, मैं स्तब्ध होकर बैठा रहा। आज तक मेरे सामने किसी ने इस प्रकार से धर्म का प्रचार नहीं किया था। यहाँ पे सातवां अध्याय समाप्त होता है।